सचमुच में धर्मराज हो, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हैं, सभी भाई जीवित हो उठे। जब सौ कोई नहीं, धर्मराज श्री नारायण थे, वे अपने पुत्र युधिष्ठिर की धर्म की परीक्षा के लिए वहां पर आए।
Today we went to Kamyavan, and on the road there we passed by Gatholi, where Radha and Krishna were bound together. There is Ulal Kund, where there was holy pastime there, and even today, every day on Holi, that Kund becomes red with the color of it. There is Vihaya. That means Indra, Vihaya means no shame, because Indra tried to destroy the Vrindavasis by raining on them for 7 days. There is Deepakur, which is now known as Deep, one place of Manavar. But especially Kamyavan. Kamyavan means Manoharam, all attractive, beautiful. And Kam also means desire to perform Krishna's seva. That Kamyavan has the power to fulfill any desire in relationship to Krishna. Therefore, it is called Kamyavan. There is also Kameshwar Mahadev, who fulfills the desires of anyone who comes to him. There is Dharmakund, where Yamaraj and Daksha, the Yaksha, had a conversation. The Pandavas were very thirsty, therefore Yudhishthira Maharaj sent Bhimsen, go and find some water, and after drinking yourself, bring some back to us. Therefore Bhimsen found a very nice pond there, and he went to drink when a voice came, hey, answer my questions, or I will finish you. But Bhimsen ignored and tried to drink the water, he fell dead. Wondering why Bhimsen was so late, Yudhishthira Maharaj sent Arjuna. Arjuna also came with his Gandiva bow. When he saw his brother dead, he fell into lamentation. But he was so thirsty, he went to drink, and the voice came, hey, first answer my question, then drink, otherwise you will meet the same fate as your brother. Nakul, Sahadev also followed, they met the same fate. Then last, Yudhishthira Maharaj himself came, and the voice said, hey, answer my questions, otherwise you will meet the same fate as your brothers. Therefore, Dhammaraj asked, yes, Yudhishthira Maharaj said, who are you? Please come here, and I will answer your questions. Therefore, that Yaksha asked many questions. Kimastarja, what is the most astonishing thing? Kavata, what is the news of this world? Who causes the sun to rise? Yudhishthira Maharaj said, Brahmaji, he causes the sun to rise. Who is heavier than the earth? Nala. Who is higher than the sky? Father. Of all qualities, which is the best quality to possess? Shama, forgiveness. Of all religion, what is the best religious principle? Yudhishthira Maharaj said, Vairagya, renunciation. Which is the most powerful thing? The most numerous thing? Yudhishthira Maharaj said, Chitta, thoughts. Who is a sadhu and who is a non-sadhu? So Yudhishthira Maharaj said, a sadhu is that who works for the benefit of everyone. And asadhu is that person who cannot control his senses. Who is happy? That person who has no debts to anyone, who does not live in a foreign land, and who maintains themselves with whatever food is available nearby, that person is happy. What is the news of this world? Maharaj said, the jivas are like vegetables in a pot being cooked by time and get the results of their karma, happiness and distress. This is the news of this world. And what is the path? It is the immersion. There are two truths that are very difficult to understand. It is hidden in the cave-like hearts of the sadhus. Because Buddhists differentiate between themselves with many variegated ideas, therefore the real path towards perfection can only be understood by a few Mahajans. Swayambhu, Nanak, Shambhu, Kumara, Kapala, Manu, Prat, Janaka, Bhishma, Bali, Vaisakha, Vayam. Therefore, there is only one path, that is the path enunciated by the previous authorities. That gaps are very happy. I am very pleased with your answers. Therefore, you may choose one brother to come back to life. You didn't hear what I said? I will choose Nakul. That Yaksha was astonished. That war with the monk of Buddha Guru will soon take place. Bhima has the strength of 10,000 elephants. And Arjuna is the most famous warrior. Why you don't take one of them? Yudhisthira said, I cannot believe religious principles. My father had two wives, Kunti and Madhuri. I am the eldest son of Kunti, therefore I have to take the eldest son of my co-mother, because I have to see them equally. That Yaksha was very impressed and said, take all your brothers. Then he revealed himself as known as Dhammaraj, Yamaraj himself.
Dusra Prasanga. पांडव लोग वनवास के समय वहां थे. जयद्रथ इनका बहनोई लगता था, दुर्योधन की बहन से उसकी शादी हुई थी. वो द्रौपदी पर आसक्त था. वो एक दिन छिपकर विमला कुंड में आया. आप लोग विमल कुंड में गए हों और देखा जे द्रौपदी पानी लेकर के जा रही है स्नान करके, तो सुना जे वनवासी पांडवों के साथ में क्यों रह रहे, तुम हमारे साथ में आओ, तुम राज रानी होकर के रहे. बहुत प्रलोभन दिया शाम दान गंध से, किंतु वो तो पतिव्रता नारी थी, वो नहीं मानी. अंत में जबरदस्ती उनको पकड़ करके रथ पर ले गया और बांध करके लेकर के चला. अब ये तो पांडवों का नाम लेकर अर्जुन भी चिल्लाने लगी और उनके कानों में शब्द पड़ा, वो भी रथ लेकर के चले. भीम ने देखा कि हमारा रथ उतना तेज नहीं चल रहा, तो वो रथ को छोड़ करके ऐसे ही दौड़े और अर्जुन ने अग्नि बाण मार करके ऐसा किया उसके रथ के सामने चारों तरफ में आग लगा दी. अब वो आगे बढ़ नहीं सका. फिर दोनों ने पकड़ लिया और पकड़ करके कहा इसको मार डालना चाहिए. अर्जुन ने कहा यह अभी मत मारो, जिसके चरणों में अपराध किया वहां ले चलो, महाराज युधिष्ठिर के पास में चलो. वहां पर ले गए. भीम ने कहा इस आतताई को मार डालना चाहिए और अर्जुन ने कहा जरूर इसको मार डालना चाहिए. युधिष्ठिर ने कहा जे शांत रहो, जिसके चरणों में अपराध किया है उसे पूछो, द्रौपदी से पूछो क्या चुकाती है. द्रौपदी ने कहा यह तुम लोगों का बहनोई लगता है, यदि तुम लोग इसे मार डालोगे तो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी और सारा जीवन विधवा का जीवन निर्वाह हो. मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन विधवा हो, इसे छोड़ दो. किंतु वो लोग बोले भीम और अर्जुन नहीं आता ही है, इसको जरूर मारना चाहिए. उस समय में कृष्ण ने कहा देखो मानी व्यक्ति का अपमान कर देने से ही उसकी मृत्यु होती है. तुम लोगों का बहन हुई है और द्रौपदी ने क्षमा कर दिया है, तो इसको अपमान करके छोड़. तो अर्जुन ने उसका मुंडन करके पांच चोटी रख दी और ये मुश कमा दिया और मुसलमानों जैसा दाढ़ी रख और छोड़ दिया। वो बड़ा असल तो आप प्रतिज्ञा किया, मैं पांचों पांडवों को ध्वंस करके रहूंगा। लौट के आप तपस्या घोर की शंकर जी की। शंकर जी ने कहा जी वर मांगो, तो उसने वर मांगा जी हम पांचों पांडवों को मार सके। ये कबीर है, जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं कोई नहीं मार सकता है। तब हां एक दिन अर्जुन को छोड़ करके बाकी जो चार पांडव हैं उनको तुम हरा सकता है, बस इतना कर सकता। इसीलिए अभिमन्यु के वध के समय में, चक्रव्यूह के समय में वो आगे खड़ा था, पांचों चारों पांडवों को हरा दिया, अर्जुन दूसरी जगह में चले गए और सब लोगों ने मिलकर के उसको मारा। अर्जुन जब सुना जब अभिमन्यु मारा गया तो उन्होंने कहा कि आज प्रतिज्ञा किया कि कल उसको शाम के पहले ही जरूर उसे अर्पण कर। किसने कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया, अब तो जो हो गया हो गया। दूसरे दिन ये द्रोणाचार्य जी चारों तरफ से उसे घेर करके बीच में रखा जो अर्जुन वहां तक पहुंच ना सके। घोर लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद में कृष्ण ने जानबूझकर के सूरज को अपने चक्र से छिपा दिया, मानो शाम हो गई। और जब शाम हो गई तो अर्जुन ने कहा ये अब तो हम मरे, तो मरने करने के लिए चिता लगाई, चिता भी तैयार हो गई। तो कृष्ण ने कहा कि वीर लोग अपना अस्त्र लेकर के मरते हैं साथ लेकर। उन्होंने गांडीव अपना हाथ ले लिया। इतने में दुर्योधन बोला जी अब तो मर रहा है उसको, चलो मरते समय देख लो। जाते सामने आया और सूर्य से चक्र हटा दिया, दीन उठ गया और कहा जब क्या देखते हैं मारो। बस अर्जुन ने अस्त्र लिया और उसे मारा, किंतु उसे बल था, मारने से फिर वो उसका सिर जुट जाएगा। वो मारने से फिर जीवित उठेगा। इसलिए ऐसा हो जे उसके पिताजी यदि उसके सिर को जलांजलि दे छोड़ दे तब वो मर सकता, अन्यथा। तो उस संध्या के समय में सूर्य को पानी दे रहा था और सिर काट करके उसके अंजलि में दिया और वो दे रहे थे, वो हाथ से छूट गया, गिर गया। दिखा कि इतना भारी क्या है, और ये तो हमारे बेटे का इतने में तो कौन। ऐसी बड़ी बड़ी कथाएं हुई। एक तीसरा प्रसंग है, पांडव लोग वनवास के समय वहां थे, दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया। 60,000 ऋषियों के साथ में हम यहां पर जिस प्रकार से आपका आपको भोजन कर रहा है उसी प्रकार से आप जाएं। जब द्रौपदी भोजन कर ले दोपहर के बाद में आप जाएं, ठीक है उसको ये ठीक ऐसा ही करें। इधर द्रौपदी ने सब पतियों को भोजन करा दिया, जितने अतिथि है सबको भोजन करा दिया और अंत में अपना भोजन करके थाली को बटलोई को मांझ करके और रख दिया। इतने में दुर्वासा 60,000 ऋषियों के सहित में आए, बोले हमको भूख लगी है भोजन कराओ। मैंने कहा जब क्या किया जाए, युधिष्ठिर ने परामर्श करके कहा आप स्नान करके विमल कुंड में आइए, आपको भोजन तैयार मिलेगा। वो चले गए। इतने में द्रौपदी से पांडवों ने कहा तुम्हारी बात कृष्ण सुनते हैं, जल्दी बुलाओ रक्षा करो, नहीं तो आज तो सभी मरे, हम अभी संपात देगा मर जाए। द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया, और स्मरण करने के साथ ही साथ में कृष्ण वहां पर पधार गए। कृष्ण ने कहा कि सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, खिलाओ। हाँ, तो इसीलिए तो हमने बुलाया और आप भोजन कर दिए खा रहे हैं। कुछ नहीं है, खा पी करके हड़िया उलाट किया है, सूर्य का बर है, खा पी करके द्रौपदी सबको खिला पिला करके बटलोई मार करके उलाट करके रख देगी। इसके बाद में उस हड़िया से कुछ नहीं आएगा। तो मैंने तो उसे ठीक करके साफ करके उसको उलाट करके रख दिया है, हमारे पास में कुछ नहीं, तो भी कुछ ले आओ। तो है नहीं तो क्या ले आओ। उधर दुर्वासा जी से मरे ना आपसे, कृष्ण कहा से पटलोई तलाओ। तो ले आया, देखा उसमें उठाकर एक तीन का साग का लगा हुआ था। कृष्ण ने अंगुली से उसको बड़ी मुश्किल से तिनके को लेकर के मुख में दिया, कहा जब पानी लाओ। पानी के तृप्तोस्मी तृप्तोस्मी इतना कहने के साथ में जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों का पेट फूल गया और देकार भरने लगे। और भीम को कृष्ण कहा जे तुम जाओ बुला लो। भीम गदा लेकर के चला, उसको देखते ही खाने की तो जगह पेट में नहीं, पेट भरा हुआ बेकार रहे। इसलिए ऋषियों ने कहा जैसे हमको याद है दुर्वासा वाली बात, इसलिए सभी भागो यहां से। भाग करके वहां से स्वर्गलोक तो हुए, जनलोक इत्यादि में चले गए। इस तरह से यहां पर बातें। और भी एक प्रसंग है, दुर्योधन ने देखा विमल कुंड के पास ही में ये लोग है, सब जितने वीर हैं कर्ण से लेकर के और सब जितने सब दुशासन इत्यादि सेनाओं को लेकर के यहां आकर के उत्सव करने लग गया। तंबू लगवा दिया गया डेकोरेशन करके और उत्सव मनाने लग गया। इंद्र को पता चला, इंद्र ने अपने सेनापति को चित्रसेन को भेजा, जाओ दुर्योधन को पकड़ करके ले आओ। चित्रसेन आया और दुर्योधन की समस्त सेनाओं को हराकर और दुर्योधन को पकड़ करके ले चला स्वर्ग में। अब वो चिल्लाने लगा दुर्योधन। अब ये सुनकर के महाराज युधिष्ठिर बोले थे सुयोधन भीम जल्दी से उसकी रक्षा करो, मैं नहीं जाता। जो काम हमारा विरोधी कर रहा था और उसको इंद्र अपने सेनापति के को भेज करके और उसको बांध करके ले जा रहा है, अच्छी बात है। उन्होंने अर्जुन को पुकार बोला, अर्जुन भीम नहीं सुनता, तुम जाओ तो हम लोगों में परस्पर लड़ाई झगड़ा होगा, किंतु दूसरों के लिए 105 हम लोग हैं, इसलिए जाओ उसकी रक्षा करके ले आओ। ये गए और उसको परास्त करके आकाश में ही और सीढ़ी वहीं से बनाया, दुर्योधन को वहां से उतार लाया। सीढ़ी आई कहां, जहां पर धर्मराज बैठे थे वहां पर जब आया तो महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, बोले जे सुयोधन तुमको बड़ा कष्ट हुआ, अब तुम अपने घर जाओ विश्राम। अब उसको यह अपमान हुआ, ये ढूसी हमारा अपमान इतना किया, अब इस अपमान का हम बदला लेंगे। दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं, भलाई करने पर भी वो बुराई ही सोचते हैं, किंतु कृष्ण जी इसकी रक्षा करते हैं, उसको क्या करेंगे। अंत में मारे गए उन्हीं अर्जुन भीम इत्यादि के हाथ। ये सब ये हुआ। और बाकी विमल कुंड में आप लोग गए, जसोदा कुंड पास ही था, जसोदा जी का पिहर वहां था, पिताजी का घर वहां पर। जब कृष्ण बचपन में अपने मैया के साथ अपने मामा के घर में वहां पर थे,
वहां पर बहुत सी लीलाएं हुई हैं। वहीं पर श्वेत बांध रामेश्वर महादेव हैं, श्वेत बांध रामेश्वर है, जहां पर क्रीड़ा करते समय गोपियों ने कहा राम ने तो पुल बांध दिया था और तुम कहते हैं जो मैं ही राम हूं, जरा दिखलाओ। तो उन्हें बंदरों को हुक्म दिया और सब बंदर एक मिनट के अंदर में पत्थर को लेकर के पुल बांध दिया। और वहीं पर वो श्वेत बांध रामेश्वर नारद कुंड इत्यादि 84 कुंड है, 84 खंभ है, वृंदा देवी है, श्री श्री गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, आप लोग गोपीनाथ के यहाँ भी गए हैं,
धर्मकुंड भी गए,
कहाँ
धर्मकुंड,
धर्मकुंड गए, हाँ धर्मकुंड में भी गए, वहां की कथा सुनी, विमल कुंड में जाकर के वहां की कथा सुनी, फिर कौन महादेव कामेश्वर महादेव में गए, वहां की कथाएं सुनी, चरण पहाड़ी ऊपर में और चरण चिन्ह देखा, वहां की कथा सुनी होगी, नहीं बतलाया गया ना वहां चरण पहाड़ी का, चरण पहाड़ी कृष्ण गोचारण करते समय वेणु बजाई और वेणु बजाने से उस पर्वत पर कृष्ण के चरण चिन्ह उठाए और गायों के चरण चिन्ह, सखाओं के चरण चिन्ह। हम लोग गुरु जी के साथ में जब गए थे आज से करीब करीब 40-50 वर्ष पहले, उस समय उसी पहाड़ी के ऊपर में गायों के बछड़ों के चरणों के चिन्ह, सखाओं के चरणों के चिन्ह थे। अब वो सब लोग लेकर के घर घर में चले गए, अब सब नहीं है, किंतु चरण पहाड़ी वो पड़ा हुआ है। वहां पासी में लुकलुकी कुंड, कृष्ण लुकालुकी करते थे, पासी में प्रबोधानंद सरस्वती का स्थान है भजन का, बहुत दिनों तक तो वहां पर काम पर में रह करके उन्होंने भजन किया। इस तरह से आप लोग वहां से होते हुए कदम्ब खंडी के पास से होकर सुनहरी कदम्ब खंडी, सुनहरा गांव, उधा गांव, सी पलसो इत्यादि होते हुए आप लोग आए हैं और बाकी सब पीछे गौ प्रेमानंद। आप लोग क्लांत हैं, ये कथा सुनने के बाद में घर आती होगी, आप लोग जाकर के विश्राम करें।
But sister, sorry, sister Priyoni, therefore by divine property, the Pandavas had spent 12 years in exile, therefore for some time they were residing in Kandivan. Draupadi had gone to take bath, therefore Jayadrath approached her. Oh, why are you staying with your husband? Very useless. You should come with me and I'll make you queen. He gave many arguments, but he could not convince Draupadi because she was a Patibrata, very chaste and ideal lady. Therefore Jayadrata took her by force on his chariot, and as she was being carried away, she called out for her husband. Bhishma was following on
chocolate Switzerland cup ke liye.
But not being satisfied with the speed of the chariot, he
Switzerland ka chocolate hai. Switzerland का चॉकलेट।
Arjuna threw his arrows and made a wall of fire blocking the chariot of Jayadrata. They both caught Jayadrata and gave him a good beating. They took him to the feet of Yudhisthira. Both Bhimsena and Arjuna wanted to kill him, but Yudhisthira said, "No, he has made offense to Draupadi, therefore we should ask Draupadi what should be his punishment." Draupadi said, "Listen. Because he married the sister of your cousin, then he is your brother-in-law. Do you want that your own cousin's sister will be a widow and spend the rest of her life in such a situation?" Therefore, it is the man said, "For someone who has been honored, dishonored is for someone who has been honored, This honor is worse than death. Therefore they shaved him, leaving only 5 sickles. And they shaved up his mustache to make him look like Osama bin Laden. Therefore he became very much insulted. He tried to please Mahadev. When Mahadev came, he said, "Give me a benediction, I can finish all the Pandavas." But Mahadev said that is impossible because they are protected directly by Krishna himself. "But I give the benediction for one day only. If Arjuna is not present, you can defeat all the 4 Pandavas.
No, not Arjuna.
Other than Arjuna, if Arjuna is not present, you can defeat those 4 Pandavas.
He is not present, not like this. Other than Arjuna, you can defeat them. Only one.
Therefore, that is how Abhimanyu was killed in the Chakravyuha, because Arjuna was not there. Therefore, when Arjuna learned his son was dead, he became very angry and took a vow. By the sunset of the next day, I will kill Jayadrath or I will end the fire. Therefore, Krishna said, "Why do you make such a vow?" Therefore, the next day, Jayadrath was put in the middle of the army. The whole day, Arjuna was fighting, but he could not approach. Therefore, Krishna, he covered the sun with his Sudarshan Chakra, and Arjuna was accepted the feat. They made one funeral pyre. Arjuna went to enter the fire. Krishna said, "Wait, if you are a real hero, you should take your weapons with you." As he went to the fire, he got. Therefore, he went, as Arjuna was going to the fire, Krishna said, "Oh, Jayadrath, you should come a little forward, then you can watch the show." Duryodhana told him, "You come a little closer, then you can get front row seat." Then, as Arjuna was there, about to enter the fire, Krishna took away his Sudarshan Chakra, and Krishna said, "There he is, finish him." And Arjuna took off his head. Jayadrath had a benediction. Then Arjuna cut off the head and sent the arrow to his father, who was offering oblations in the water. When that head came on his hand, oh, it's very heavy. Then when he threw it, oh my God, that's my son's head. And he also died like that. So many nice pastimes there. Duryodhana had pleased Durvasa Rishi. Therefore he asked the benediction. "Oh, Durvasa, you with your 60,000, my goodness, I have mercy. With your 60,000 disciples, you go there and take lunch with the Pandavas." Therefore, Draupadi had a special magic pot given by the sun god. You go after lunch. Therefore, Draupadi had one special pot. After she would serve her husband, no matter how many guests she would serve, and after she had eaten and washed the pot, then that pot would not give any more khichdi for the rest of the day. So, that time after Draupadi had fed the guests, she cleansed the pot and put it upside down. That time Durvasa Rishi with his 60,000 disciples came. That time he said, "Oh, Yudhisthira Maharaj, feed me." So Yudhisthira Maharaj said, "Maharaj, you go and take bath. After bath, you come back from prasad." Then Draupadi became very worried. She remembered Krishna and prayed, "Oh, Krishna, save me." So Krishna came there. "Oh, Draupadi, I'm very hungry." And Draupadi said, "You are also hungry. This is the whole problem." Krishna said, "There must be something." Therefore, Krishna looked at the pot and very with difficulty, he took one piece of spinach and put it on his and ate it and asked for one glass of water and said, "Give those to me." That's me to see, that's me to see. Krishna is satisfied. Everything is satisfied. Therefore, meanwhile, Durvasa and his disciples were taking bath and their stomachs became completely full. Even they started belching. Then Krishna said to Bhimsen, "You go there and bring them." So Bhimsen with his cloud was calling, "Maharaj, come from the south." Then Durvasa became afraid. It's Armageddon. Armageddon out of here. The disciples remembered, oh, before that problem happened with the disciples, therefore they ran. Some went to Sparta, everybody ran away from there. So at last, the gurus had come here to Kapila and had performed a big festival there to give extra torture to the Pandavas. Then they had Pandavas, tents, dancing girls, everything there. They were making such a large festival to give some suffering to the Pandavas. They were Indra could not tolerate with Indra and the father of Arjuna. Then he sent his commander, Chitrasen. Chitrasen and the army came from Swarga and defeated the Kurus and bound Duryodhana like a beast and were taking him in the sky. That time Duryodhana was crying. Yudhisthira Maharaj, seeing his cousin brother, he called Bhimsen. Oh Bhimsen, you should save Duryodhana. And Bhimsen said, forget it. It is very good that Chitrasen is accomplishing what we wanted without any effort on our behalf. Why we should save him? Then Arjuna asked Arjuna. Arjuna defeated the army of Indra and made a staircase of arrows that Duryodhana would come down right at the feet of Yudhisthira Maharaj. Yudhisthira has said, been sent. We are 100 and they are 5. But when some outside person comes, then we are 105.
We are 5.
Also there is Vinodkund, Yasodakund, which is Yasoda's house, her father's house. Sometimes Mother Yasoda would take Krishna there. There is Seth Bandhu, and Seth Bandhu, Rameshwar was there. One time the gopis asked, Krishna, you are always saying you are Ram. Give us some proof. Therefore Krishna called monkeys, and in 1 second they made a bridge across that kund. We went to Gopinath, we went to Vrindavan, and many places we went. And last, we went to Chandrapahari. There was cow grazing pastimes. Krishna played his flute, and the ground melted, and now the footmark of Krishna is there. Guruji says, in the time of Param Gurudev, 40 or 50 years before, we would go, and there we would see the footprints of the friends, the cows, Krishna's sticks, everything was there, but people have cut the stone and take them to their houses. Therefore, on the top we can see Gurukuti Kund, and near there see Paralananda Saraswati Thakur performed bhajan for many years, and just nearby is Kedambakiri, all Paralananda.